Ajbab ne kaha ki ye holiest of the holy place hai, jahan koi sadharan atmaye nahi aa sakti. Yahan to pavan atmaye hi aa sakti hain, shreshth atmaye hi aa sakti hain. तो इस होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस में आप सभी होली हंसों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है. आप सब चैतन्य फूल भी हैं. कोई भी बगीचा यदि फूलों से रहित हो तो वो बड़ा ही उजाड़ सा लगता है. तो आप सब चैतन्य फूल इस सुंदर बगीचे में आए हैं तो एक सुंदर रिमझिम हो गई है. तो ऐसे चैतन्य रूहे गुलाबों का भी दिल से बारंबार अभिनंदन स्वागत. बाबा ने कहा आज ये इंद्र की सभा है. बाबा ने कहा इंद्र शिव बाबा है, तो आपके आगमन से आज इंद्र भी प्रसन्न हुए है ना. तो प्रसन्न हो कि उन्होंने क्या किया, आप पे गुलाब बरसे की बरसात नहीं की, गुलाब बरसे की. तो उन्होंने भी आपका दिल से स्वागत किया. क्योंकि मधुबन में बच्चे हैं तो बाबा भी अति आनंदित होते हैं अपने प्यारे बच्चों को देख करके. पहले गीत बजता था कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है जब कोई जाता था तो. आज शायद बाबा ये गीत गा रहे हो कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार आ गया है. तो इतने सारे श्रृंगार आ गए हैं भगवान के, तो भगवान भी दिल से बहुत बहुत खुश हो रहे हैं. तो आप सबका एक लंबे अंतराल के बाद आना हुआ है मधुबन में. मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत आप सब सौभाग्यशाली हैं. विश्व में लाखों ब्राह्मण हैं, उन लाखों ब्राह्मणों में से सभी की ये चाहना है कि वर्तमान में हम मधुबन जाएं, प्यारे बाबा के घर जाएं. तो मधुबन आने की चाहना कितनी सब में प्रबल है, तीव्र है. आप सब ने भी देखा होगा अपने जो संबंध संपर्क के भाई बहने हैं उनको, उन लाखों आत्माओं में से जिसको बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में कोई, तो वो कौन है, वो कौन है? आप सब हैं जो यहां पहुंच गए हैं. तो ऐसे कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो यहां पहुंचे सौभाग्यशाली आत्माएं, उन सब का बाबा के सुंदर घर में, फुलवारी में, आपका अपने ही घर में दिल से स्वागत और अभिनंदन है. हम एक सुंदर लक्ष्य को लेकर के यहां पे आए हैं भट्टी के, तो आपके स्वागत और प्रेरणा साथ ही शुभकामना के लिए मैं आदरणीय सुमन बहन जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें अपने प्रेरणादायी वचनों से और इस बेहद घर में स्वागत भी करें. आप जानते हैं आदरणीय सुमन बहन जी बाल्यकाल से ही बाबा के घर में आ गई थी. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, आप बास्केटबॉल प्लेयर भी रही नेशनल लेवल के, इतना अच्छा करियर हो सकता था वहां, लेकिन फिर भी बाबा के यज्ञ के लिए, सेवा के लिए आप सबको बहुत दिल से प्यार था. तो अपनी स्टडी पूरी करके आप यहां समर्पित हुई हमारे बीच. आदरणीय दीदी आ गई हैं, दीदी का हम सब दिल से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे. आप सबको बहुत प्यार से दीदी ने यहां निमंत्रण दिया है. इतना विशाल दिल, तो बाबा का तो दिल से बारंबार शुक्रिया है ही, दीदी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है. तो एक बार ताली से दीदी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं. तो मैं कह रहा था आदरणीय सुमन बहन जी ने अपना जीवन 1992 में अपने स्टडीज कंप्लीट करने के पश्चात बाबा के बेहद घर में समर्पित किया. वर्तमान समय आप एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपकी इस भट्टी के भी बहन जी ही सूत्रधार हैं. तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सुमन बहन जी से कि अपनी प्रेरणाएं, शुभकामनाएं आप सबके प्रति रखें.
ओम शांति. आदरणीय दीदी जी और इस हॉल में उपस्थित सभी ब्रह्मावस्त जो अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं, इसी लक्ष्य से कि गहन तपस्या करके कुछ न कुछ अपने में परिवर्तन लाने के लक्ष्य से यहां पहुंचे हुए हैं। अभी वर्तमान समय को देखते हुए ये महसूस होता है कि अंतकाल बहुत नजदीक है और ब्राह्मणों के लिए बहुत ऊंची एक लक्ष्य है, वो पाने के लिए हमारे पास समय कितना है। और जैसे रुपेश भाई कह रहे थे कि बहुत लोगों की ये आश रहती है यहाँ पहुंचने की और बाबा के साथ एक गहन तपस्या करके अनुभव करने की, लेकिन आश होते हुए भी कितने लोग यहाँ पहुंच पाते हैं या फिर समय अनुसार हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इसलिए भी हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो काफी साल पहले बाबा हर बार ये कहते थे कि ऐसा भी समय आएगा जो एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे या मधुबन नहीं पहुंच पाएंगे। हम हमेशा ये सोचते थे कि ऐसा काल कब आएगा, तो क्योंकि सभी नॉर्मल था, लेकिन इस साल जो ये कोरोना काल आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि ऐसा भी समय आ सकता है। इसके पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाबा कई बार मुरलियों में ये बोलते थे। और आगे ये भी ये महसूस होता है, ये यहां तक ही ये फुल स्टॉप नहीं होगा, आगे चल करके और ही विकराल परिस्थितियां आ सकती हैं। इसीलिए जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो उसको अच्छी रीति हमें उपयोग करने की जरूरत है। एक समय था जब बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे पांडव भवन में, जब मेडिटेशन हॉल बना लोगों को यह था कि बाबा इतना दूर है, फिर ओम शांति भवन बना बाबा स्टेज पे आने लगे, फिर उन लोगों को लगा कि बहुत दूर है, बाबा स्टेज पे है और हम इतना दूर यहां बैठे। फिर डायमंड हॉल बना, फिर डायमंड हॉल में बैठे भी हम टीवी में देखते थे, वो समय भी बीत गया। तो जो समय हमारे सामने है उसका पूरा लाभ उठाने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल करके ये भी समय शायद आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, है ना। तो आपके सामने अभी 3 दिन है जो जिसका पूरा उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक तो पहुंच गए हैं, बहुत भाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैंसिल भी किए, आते आते रुक गए अनेकों कारणों से, लेकिन आप लोग पहुंच गए हैं। तो क्योंकि बाबा कुछ ना कुछ आश रखे हुए हैं आपके प्रति, है ना, तो इसीलिए इन 3 दिनों का जो अवसर आप सभी को मिला है उसका पूरा उपयोग करते हुए जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसके अनुसार समय पंक्चुअल रह करके हम पूरा उसका अनुभव करते हैं तो बहुत कुछ हम अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो रोज तो ज्ञान योग तो करते ही है, लेकिन यहाँ जो आकर के भट्टी कर रहे हैं गहन अनुभूति मौन भट्टी जो कर रहे हैं, एक डीप क्लेंसिंग का काम है। लास्ट मंथ हम सभी ने दीपावली मनाई, दीपावली के पहले घर को अच्छी रीति कोने कोने सफाई की, तो मन की सफाई आत्मा की सफाई किया दीपावली के टाइम पे। तो ये समय है आत्मा को मन को डीप क्लेंसिंग करने का समय, अपने अंदर देखे कौन सी कमियां हैं, कौन सी विशेषताएं, कमियों को हम दूर करने की कोशिश करें, उसको मिटाएं और विशेषताओं को बढ़ाने की कोशिश करें। वो तभी हो सकता है जब मन एकदम शांत हो, क्योंकि जब पानी एकदम शांत है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो क्लियर दिखाई देता है। ऐसे ही मन का मौन, मन जब पूरी तरह मौन हो जाता है तो फिर हम अपने आप को अच्छी रीति देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो ये जो मौन भट्टी है अपने लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हम सभी मिलकर के पूरी तरह उसका लाभ उठाएं और आने वाले समय के लिए हम एक ऐसा परिवर्तन करके दिखाएं तो बाद में हमें अफसोस ना हो। बाबा कहते हैं कई मुरलियों में कि बाद में आत्माएं खून की आंसू बहाएंगे कि काश हमने ऐसा किया होता पहले, काश हमने पहले पुरुषार्थ किया होता, तो अफसोस करेंगे, पश्चाताप करेंगे। तो ऐसा समय हमारे लिए ना आए। अभी पूरी तरह बाबा जो चाहते हैं हम उनकी आशाओं पर खरे उतरे और अपने अंदर वो परिवर्तन ला करके दिखाएं तो बाबा हमारे ऊपर गर्व महसूस करे और आने वाले समय के लिए ना खुद के लिए लेकिन अनेकों के लिए हम प्रेरणादायी बने। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी, सबका स्वागत और प्रेरणा आपने दी है। सचमुच सभी ये खून के आंसू वाले तो बाहर हैं, ये तो प्रेम के आंसू बहाने वाले हैं ना। जरा एक हाथ की हिला करके बताएं कि हम प्रेम के आंसू बहाने वाले हैं, राइट। सचमुच आप यहाँ पहुंची हैं परम सौभाग्य, और सौभाग्यशाली आत्माएं प्राप्ति संपन्न ही होंगी, और पहुंचे हैं तो बिल्कुल कमिटेड होकर के ही सचमुच हम इस भट्टी को करेंगे। ये तीन दिन हमारे जीवन के यादगार तीन दिन होंगे, भट्टी के, अनुभूति के, बाबा की समीपता के। स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप सबका स्वागत है आज, इसीलिए मैं शुभ स्वागतम, सत स्वागतम, ये स्वागत सचमुच पूरे ही ब्राह्मणों का, पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से, सभी ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से। आप सबको देखकर सबके चेहरे खिल गए हैं क्योंकि लंबे समय के पश्चात ब्राह्मण आत्माएं यहाँ आई हैं, सेवा के रूप में भी, तपस्या के रूप में भी कहें तो सचमुच एक सुंदर सा, एक रिमझिम, एक सुंदर माहौल तपस्या का बना है। अब मैं दीप प्रज्वलन की विधि हम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हर शुभ कार्य की शुरुआत दीप से होती है और दीप का बड़ा गहरा नाता और संबंध है हमारे हर कार्य से, आत्मदीप भी और साथ ही परमात्मा पिता भी जो दीप राज है उनकी स्मृति दिलाने वाला। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय दीदी से, सुमन बहन जी से, संजय भाई जी से, श्रीकांत भाई जी से, जोधपुर से मीनू बहन जी हमारे बीच होंगी, मीनू बहन जी से, तो सभी सामने आएंगे और दीप प्रज्वलन की ये सुंदर सी विधि हम करेंगे। प्यारे दीपराज बाबा और साथ ही साथ हम सब दीप रानियां मिलकर इस सुंदर भट्टी का एक शुरुआत। मैं संजय भाई, श्रीकांत भाई से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएंगे। आप सब भी इस दीप प्रज्वलन की सुंदर विधि में हमारे साथ हैं।
कल्याण रूप शिव संकल्पों का, कल्याण रूप शिव संकल्पों का मूर्त रूप है ज्ञान सरोवर, कल्याण रूप शिव संकल्पों का मूर्त रूप है ज्ञान सरोवर।
ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर है ये अपना ज्ञान।
प्रज्वलन के साथ हमने प्यारे बाबा का आह्वान किया और इस तीन दिन की भट्टी में प्यारे बाबा भी हमारे सम्मुख रहेंगे, हम में बल भरेंगे, शक्ति भरेंगे, क्लासेस तो हमें मिलेंगी, योग भी हम करेंगे, लेकिन विशेष अनुभूति दीपराज बाबा हमारे अंग संग रहें इसकी हम जरूर करेंगे संपूर्ण मौन रहते हुए। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सबकी अति आदरणीय, जिन्हें प्यारे बाबा भी निर्मल आश्रम कहकर के संबोधित करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड। मैंने जब भी दीदी मिलती हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा से तो देखा कि बाबा कितना रिगार्ड देते हैं दीदी को। दादी जानकी जी भी जब भी मिलती थीं तो दादी हमेशा ही दीदी को दीदी कहती थी कि दीदी अब बोलेंगे, दीदी आप ये पूछो, इतना रिस्पेक्ट। हम समझ सकते हैं कि ऐसी आत्मा जिन्हें भगवान भी इतना सम्मान देते हैं वो आत्मा कितनी हम सब के लिए शुभ भावना शुभकामना से भरी हुई हैं। तो बाहरी तौर से मास्क तो जरूर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन वर्तमान में अभी हम दीदी की आशीर्वचन और प्रेरणाएं सुनेंगे जिन्होंने हमें बहुत प्यार से दिल से बड़ी दिल से निमंत्रण दिया है ज्ञान सरोवर में भट्टी करने का। आदरणीय दीदी
ओम शांति। बाबा के घर में आए हैं भट्टी करने, तो ये कोरोना की एक फायदा ये हुआ है कि भारत वालों को यहाँ भट्टी में आने का चांस मिला, नहीं तो ज्ञान सरोवर विंग्स वाले और डबल फॉरिनर्स ही लाभ लेते हैं। और इस बारी काफी छोटे छोटे शहरों को भी हम लोगों ने छुट्टी दी है। यहाँ के हमारे जो भाइयों ने अपने जो भी मित्र संबंधी है सबको बुला लिया, तो ये सचमुच आपका भाग्य है क्योंकि एक बहन ने कहा कि उसके सेंटर वाले हमेशा कहते हैं कि हमको ज्ञान सरोवर के ले जाओ, तो अभी जो आए हैं लाभ लेना। और साइलेंस में ज्यादा रहना, सिर्फ वाचा साइलेंस नहीं, मनसा एक बाबा। आजकल बाबा मूल्यों में क्या कहते हैं, जब भी एक दो को देखो आत्मा समझ कर देखो, बातचीत करो आत्मा समझ कर करो, सेवा करो आत्मा समझ कर करो। तो आत्मभान में तो रहना ही है, परंतु यहां है तो दूसरी स्टेज है फरिश्ता बनकर। तो ये मौका है, मधुबन में क्लास और ग्लास सिवाय कुछ नहीं, ना ना शॉपिंग करनी है, ना खाना पकाना है, ना सफाई करनी है, ना नौकरी धंधा। तो ये जो चार पांच दिन आप आए हो, बस अपने आप को फरिश्ते समझकर सब रिश्ता भूल जाना, घर भूल जाना, बाल बच्चे भूल जाना, नौकरी धंधा भूल जाना। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में हूं, ऐसे घूमते रहना। और इतनी शक्ति शक्ति जमा करना, इतना यहाँ अभ्यास करना जो वहां घर जाकर भी वो अभ्यास चालू रहे। बाबा कहते हैं क्या होता है, मधुबन में तो नशा चढ़ता है, जैसे माउंट आबू से नीचे उतरते हैं धीरे धीरे नशा फुस हो जाता है, जैसे बलून को सुई लगाओ तो क्या होता है हवा निकल जाती है, ऐसे ना हो। यहाँ का खुशी नशा जमा किया हुआ खजाना ले जाना और वहां जाकर बढ़ाते रहना और लक्ष्य रखना है माया जीत बनना, क्योंकि जब माया जीत बनेंगे जगत जीत बनना, और बड़े ते बड़ी माया ग्रस्तियों की क्या है, मोह। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे करते रहते, तो ये देखना है जो हमारा फाइनल लक्ष्य है क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो ये हमारा फाइनल लक्ष्य कि किसी में भी मोह ना रहे, व्यक्तियों में, वैभव में और जो टीचर्स है सेंटर में, स्टूडेंट में, अपने मकान में आदि आदि में बिल्कुल मोह ना रहे, ये ध्यान में रखना। दूसरा बाबा कहते हैं इस वर्ष की अभी की रिसेंटली मुरलियों में निर्विघ्न रहना है, विघ्न विनाशक का हमें टाइटल मिला है, तो हमें विघ्न विनाश करने हैं। परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, विघ्न आएंगे, परंतु विघ्नों से घबराना नहीं, खत्म कर देना, इतनी हमारे में शक्ति हो जो विघ्न दूर से ही हमारे से घबरा के भाग जाए। और तीसरा बाबा ने इस वर्ष अभी अभी की मुरलियों में कहा है, जितना बाबा से प्यार है उतना परिवार से प्यार है, हर एक भाई बहन से प्यार, अपना जाति, कुल, भाषा, उसका भेद ना रहे। और ऐसे नहीं कि हमारा उन्हों से प्यार है इससे प्यार नहीं है, क्योंकि इसके संस्कार मिलते नहीं, तो न लगाव हो, न टकराव हो, न झुकाव। दादी कहती थी ये तीनों ना हो, झुकाव भी ना हो, किसी से प्रभावित होके झुकना नहीं है, जिनको विशेषता है, जिनमें जो भी विशेषता है वो हम एप्रिशिएट करते हैं, समझ सकते हैं, परंतु बाबा ने उनको विशेष बनाया है तो महिमा बाबा की हो, व्यक्ति की ना हो, उसके आगे झुक नहीं जाना। और नशे में रहना है, बाबा कहते हैं हमेशा रूहानी नशे में रहो। हम कौन है, किसके हैं, क्या बनने वाले हैं, ये सदैव याद रहे। कभी भी दुख की लहर ना आए। आजकल की बाबा की शिक्षाएं, सुख के सागर के बच्चे हो, दुख क्यों हो। तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। तो बाबा ने हमें कई ज्ञान की शिक्षाएं दी है, तो अभी आपके पास समय है अपने आप को अंतर्मुखी होकर चेक करना कि मेरे में क्या कमी है, और वो कमी यहां भर के जाना, ऑपोजिट शक्ति बाबा से लेके जाना। जब भी योग में बैठते हो ना, तो लक्ष्य रखो कि हमें बाबा से क्या शक्ति लेनी है। तो जो हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी होकर जाना है, तो ये लक्ष्य जितना हो सके यहां से पूरा करके जाना। तो उम्मीद है कि आप यहां से बहुत खजाना लूट के जाएंगे। बाबा कहते मेरा खजाना खुला पड़ा है, जब भी आना चाहो आओ मेरे पास, जितना लूटना है इतना लूटो। बाबा का खजाना खुटने वाला नहीं, न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है, कुछ नहीं, और बीमारी फैलाता है। इसलिए यदि आप में से भी कभी भी अभी भी आने के बाद सर्दी खांसी कुछ भी हो जाए, तो कृपया दवाई फौरन लेना, चेक कराना, ताकि पाप के भागी बन जाते हैं ना। बीमारी फैलाने वाले क्या होंगे, पाप के भागी बन जाएंगे। यहां आप आए हैं पुण्य का खाता जमा करने, इसलिए पाप के भागी मत बनना। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी डबल डॉक्टर हैं हमारी, तो दोनों ही प्रकार से हमारा ध्यान रखती हैं, ध्यान दिलवाती हैं। और दीदी ने हमें पूरी भट्टी का लक्ष्य ही दे दिया है कि हमें इस भट्टी में क्या करना है। माया जीत बनना है, मोह जीत बनना है, निर्विघ्न जीवन बनाना है, लगाओ झुकाओ टकराव मुक्त बनना है, अंतर्मुखी रह के चेकिंग करनी है। तो ये भट्टी का आपका लक्ष्य है। और दीदी ने जो एक सुंदर सी बात हम सबको और ध्यान में दिलवाई वो ये कि आप सूक्ष्म वतन में हो अगले 4-5 दिन जब तक आप यहां हो। और सूक्ष्म वतन में क्या होता है, क्या होता है, टॉकी नहीं है, मूवी है, है ना। तो जो समझते हैं कि अगले 4-5 दिन जब तक हम यहां हैं पूरी तरह मौन में रहेंगे सूक्ष्म वतन में, वो जरा हाथ उठा के बताएं दीदी को, पूरी तरह मौन में रहेंगे। वाह बहुत सुंदर। और जो पूरी तरह से मास्क आदि पहन करके सोशल डिस्टेंसिंग का हर बात का ध्यान रखेंगे वो भी जरा हाथ उठाएं जिम्मेवारी से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है। जैसे दीदी ने कहा, परम सौभाग्यशाली हैं जो ये हमें तीन दिन चार दिन का सुंदर अवसर मिला है। इसे हम एक एक पल को अच्छी तरह से यूज करेंगे, अपनी उन्नति के लिए आए ही हैं, भरपूर होने के लिए। दीदी ने सारे भंडारे खोल दिए ना, तो झोला लेकर के तो नहीं आए हैं, क्या लेकर के आए हैं जिसमें भर कर ले जाएंगे? हाँ जी, अच्छा। तो संपूर्ण रूप से हाँ अपने आप को भरपूर करके हम जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बाबा का खजाना अखुट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः दीदी का, जो पूरे विश्व को, मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलेशिया ही नहीं पूरे विश्व में सभी को अपने वरदानों से, अपनी क्लासेस से, अपनी उपस्थिति से सजाती संवारती रहती हैं। और इस उम्र में भी देखें दीदी कितनी एक्टिव है, एनर्जेटिक है। दीदी चश्मा नहीं लगाती, इसीलिए आप बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में भी बैठेंगे ना हार्मनी हॉल में, तो दीदी आपको देख लेंगे, इसलिए मास्क जरूर पहनना है आपको। और बिना चश्मे के दीदी मुरली पढ़ती हैं। ये हम सबको सीखने की बात है ना, कि जो जितना अपने शरीर पर, आत्मा पर, पुरुषार्थ पर बाबा के ज्ञान योग में मगन रहता है, वो शरीर से भी कितना स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। तो हमारे बड़े हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी वाणी वरदानी वाणी है, हम सब दिल से उसका पालन करेंगे। अब दीदी टोली देंगे दीदी, हम दीदी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, एक हाथ की ताली बजा कर हा? अश्योर करते हैं दीदी को, दीदी आपने हम पर इतना प्यार बरसाया है, मन को मुख को मीठा किया है, आशीर्वचन दिया है। तो जो लक्ष्य दीदी ने दिया है उसे हम जरूर पूरा करेंगे, राइट। एक हाथ की ताली से दीदी को अश्योर करेंगे, विदाई देंगे। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीकांत भाई को। मेडिटेशन जो हम करने जा रहे हैं, योग, योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका क्या हमारे शरीर पर, ब्रेन पर इफेक्ट होता है। कई बार उस महत्ता को हम ध्यान में रखकर नहीं बैठते, लेकिन ये सचमुच हमारे जीवन को बदलने वाला है, हमारे जीवन के माध्यम से औरों के जीवन को बदलने वाला है, प्रकृति को, वातावरण को परिवर्तित करने वाला है। ये बहुत ही डीपली एक्सपेरिमेंटेड है श्रीकांत भाई जी। स्पार्क विंग जो है हमारा रिसर्च का विंग, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, देश विदेश की आप यात्रा करते हुए सभी को रिसर्च के लिए प्रेरित करते हैं। अनेकानेक साइंटिस्ट अब बाबा के बच्चे बन गए हैं, इस कार्य से जुड़ गए हैं, और इसकी बहुत बड़ी जो भूमिका और बहुत बड़ा जो योगदान है हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी का है। तो मैं अनुरोध करूंगा श्रीकांत भाई से कि हम जो योग करने जा रहे हैं उसको कितना इंटेंस करें और उसका क्या इफेक्ट होता है, उस पर थोड़ा हमें प्रकाश देंगे श्रीकांत भाई जी।
आप सभी विशेष लक्ष्य लेकर के आए होंगे और कुछ विशेष परिवर्तन करके जाना चाहते होंगे, और आप सभी जो अगले 8-9 महीने में जो वातावरण को देखा है, आप सभी कभी एक्सपेक्ट किया था कि इस प्रकार के वातावरण आएंगे? लेकिन बाबा ने तो मुरली में बहुत बार कहा था, जो भी परीक्षाएं आएंगे उसमें बीमारी का भी बहुत बड़ा रोल है। कई बाबा मुरली में कहते ना, सरसों मिसल पीस जाएंगे, सुना होगा साकार मुरली में। तो आपको दीदी ने और सुमन बहन, रूपेश भाई बहुत सारी बातें कहा है, लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं जिसमें इंटेंस एफर्ट लगाते हैं तो तुरंत हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है। जो पुराने हैं 91 के एक मुरली में बाबा ने योग की यथार्थ अर्थ और योग साधना का अर्थ जो बताया है, उसमें तन मन बुद्धि और दिल ये चारों का एकाग्र होना तभी साधना होता है, साधना के बाद परिवर्तन होता है। आप सबको जो पुराण है याद होगा, ये जो रिसर्च हमने शुरू किया तो उसमें कहां से इंस्पिरेशन मिला, हमारे बड़े भाई जगदीश भाई, अभी जो रिसेंटली मुरली चली उसी मुरली के बाद जगदीश भाई संपन्न बने थे, 6 महीने का काम दिया था बाप समान संपन्न संपन्न बनने के लिए। और जगदीश भाई मई 11 तारीख को शायद 2001 अपने स्थूल देह को त्याग किया था। और उसके बाद यज्ञ में मेडिटेशन की एक पूरा तरीका बदल गया। पहले हम दिन में 4 बार 5 बार योग करते हैं जो हमारा टाइम टेबल, लेकिन हर घंटे में 1 मिनट का योग शुरू हुआ उस समय, जो हम लोग अभी भी करते आ रहे हैं। और जब हम रिसर्च की बात कर रहे थे तो 2011 में DRDO के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट लिया गया था, हो सकता है कोई भाई बहन यहाँ पर होंगे जो उस प्रोजेक्ट में जुड़े होंगे अपने, हाँ पूजा बहन अब जुड़े थे, हाँ जो सब्जेक्ट्स बने थे उसमें काफी प्रयोग हुए थे। तो वो 2-3 रिजल्ट आपके सामने रखा जाएगा कि अगर हम 1 मिनट के लिए भी, अगर 1 सेकेंड के लिए भी आप दृढ़ता के साथ दिल से एक संकल्प लेकर के बैठते हैं तो तुरंत आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जो रिएक्ट करता है, ब्रेन, जिसके थ्रू आप सारे कारोबार करते हैं। और परिवर्तन हम होता है लेकिन हम उसको महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके कारण क्या है? सिर्फ 3 मिनट में, क्योंकि ज्यादा क्लास करने की जरूरत नहीं है, आपकी चित्र आपके बारे में, तो उससे पहले हम 30 सेकेंड के लिए एक थॉट के साथ एकाग्र होंगे। विचार है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, उसके बड़ा गहन अर्थ है। अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप है संकल्प कर रहे हैं, सबसे पहला जो शब्द आते हैं बाबा के वरदान, आत्मा की जो स्वधर्म है वो क्या है? शांति। तो स्वधर्म में टिकना है 30 सेकेंड, और आप ऐसे 30 सेकेंड को प्रैक्टिस करना है कि ये 1 सेकेंड अगर बीत गया फिर 5000 वर्ष के बाद वो 1 सेकेंड रिपीट होगा बाबा के महावाक्य के अनुसार, और 1 सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। तो 30 सेकेंड के लिए कोई गिनती नहीं है, जस्ट आप एकाग्रचित होकर के मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये जो आपने अभ्यास किया, अगर तुरंत आपकी यहां सर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए तो जो रियल अभ्यास किया उसमें क्या चेंज दिखेगा एक एग्जाम्पल के रूप में? ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये ज्ञान सरोवर में, और जो हम अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट किए थे योग के पहले, योग के समय और योग के बाद, हमारी ब्रेन किस तरीके से बिहेव करता है उसके ऊपर ये चित्र है। सबसे पहले जो आप चित्र को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आगे के 3 दिन आपकी स्थिति बनाने में मदद करेगा। अगर थोड़ा आप डिस्टर्ब हुए तो आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेड है। और ये दिखाने के बाद बाबा के महावाक्य आपको दिखाएंगे जो आपके लक्ष्य को निश्चित करेगा पुरुषार्थ के लिए। बाबा भट्टी में जो बच्चे आते हैं उनसे बाबा क्या चाहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। ये चित्र जब भी आप योग में आकर के बैठते हैं तो उस समय जब तैयारी करते हैं, इसको बेस लाइन कहते हैं, हम जब भी किसी की एक्सपेरिमेंट करते हैं जब उनको इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं तो कहा जाता है कि आप योग मत करो, आप अपने मन में जो भी सोचना है सोचिए आप। और इंटरेस्टिंगली देखा गया कि बाबा के बच्चे जब योग में बैठ जाते हैं, चाहे योग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि अपने आप बाबा की तरफ जाती है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। और ये बेस लाइन का मतलब जो आप कोई विशेष अभ्यास नहीं कर रहे हैं। और आप चित्र को देखिए ध्यान से, आप देखेंगे 3 चित्र हैं जिसकी जो थॉट उसी हिसाब से ब्रेन में अलग अलग जगह पर लाइट दिख रहा है, रेड और येलो कलर आपको दिख रहा होगा। और जब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं आप, तुरंत उसके प्रभाव क्या होता है आप देखिए, एक स्पेसिफिक रीजन में लाइट दिख रहा है आपको जब आप एकाग्र हो जाते हैं। आप 15 मिनट अभ्यास किया, 20 मिनट किया, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपने अभ्यास किया, फिर अभ्यास करने की तुरंत बाद, जिसको विज्ञान की भाषा में कहा जाता है पोस्ट मेडिटेटिव स्टेट कहा जाता है, योग के बाद की आपकी अवस्था है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं इसी पर काफी साइंटिस्ट लोगों से बात किया था, हम बाबा के बच्चे यही गलती कर जाते हैं। आप लोग जो भी मुरली क्लास व्हाइट लाइट होने के बाद आप जो भाई बहन बैठे हैं तुरंत कौन उठ जाते हैं? मुरली क्लास जैसे मुरली क्लास पूरा हो गया, लाल लाइट से व्हाइट लाइट हुआ, तुरंत कौन कौन उठ जाते हैं? लेकिन उठते हैं, बहनें कहेंगे ना इसके बारे में, जो बहनें बैठी हैं, हमने इसके पर भी एक सर्वे किया था, 70% भाई बहने मुरली क्लास पूरा होने के बाद तुरंत उठ जाते हैं। और जब ये डिस्कशन हुआ, ये बात आपको क्यों कहा जा रहा है, हम जो भी साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसकी तुरंत इफेक्ट कम से कम लिटरली 15 मिनट तक उसके प्रभाव रहता है, 15 मिनट। और योग के बाद की जो प्रोसेस होता है, उसी समय अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे स्वयं के लिए और सारे संसार के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना होता है, और हम तुरंत उठ जाते हैं। जब मैं डिस्कशन कर रहा था, सभी साइंटिस्ट का कहना है कि जब आप योग कर लेते हैं, आपकी ब्रेन की स्थिति इतनी अच्छी होती है, उस समय आप जो अच्छे संकल्प करेंगे अपने लिए, आपके लिए तथास्तु हो जाएगा। चाहे आप संकल्प अपने लिए कमजोरी संकल्प कर सकते हैं या तो बेहतर संकल्प करते हैं, जिसको लौकिक में अफर्मेशन बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं, लेकिन यहां पर बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे संकल्प दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये मेरी सुझाव है, जरूरत नहीं एग्जैक्टली आपको ऐसा ही करना है। जब तक 3 दिन तक आप यहां पर हैं, मुरली क्लास पूरा हुआ, आपको भी रिविजन कराया जाएगा, वो तो उसमें हो जाता है, यहां से जाने के बाद आपकी पूरी अलौकिक दिनचर्या में, जब योग भट्टी में आते हैं, मुरली क्लास में आते हैं, उसके तुरंत बाद जिस जगह पर आप बैठे हैं, पूरे सारे कारोबार होने के बाद, लाल लाइट हो गया, व्हाइट लाइट हुआ, आप वहां पर 1 मिनट से 15 मिनट तक बैठिए जरूर, ठीक है? और आप करके देखिए आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। मैंने खुद किया हूं, मेरे में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये विज्ञान कहता है कोई भी प्रोसेस आप करते, जो इंटेंस इसमें, इंटेंस एफर्ट में मन बुद्धि संस्कार, जिसको बोलते हैं टीम, थॉट, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी, ये चारों सिर्फ मुरली क्लास में और योग में जुड़े रहते हैं आत्मा के साथ। और अगर तुरंत आप उठ जाते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होता है, उससे ज्यादा खतरनाक है। हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, हमारे यहां ज्ञान सरोवर में लैब रूम है, मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि जब मैंने लगा दिया कि इसके इंस्ट्रूमेंट और वहां पर मोबाइल ऑन करते ही उसकी जो ईजी पैटर्न बन रहा था वो जिगजाग आ गया तुरंत, क्योंकि लैब रूम में अलाउ नहीं किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को, वहां नॉइज फ्री किया जाता है। तो आपको इसलिए सुना जाए, आपको तो संजय भाई बताएंगे, जब आप इस हॉल के अंदर हैं, भट्टी में बैठे हैं, कृपया एक मदद जरूर करिए इस समय। अगर आप मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, बेटर तो है आप मोबाइल लेकर के मत आओ, क्योंकि आप खास समय निकाल के आए हैं तपस्या करने के लिए, और हमने सोचा, हमने समझा भी है और इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है, अगर आज हम अपने ज्ञान योग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण मोबाइल, क्योंकि दादियां दीदियां उतना यूज नहीं किए हैं, न ब्रह्म हवा यूज कर रहा था उस समय में, और उसकी तो पूरा नो सिचुएशन है मुरली क्लास में योग अभ्यास में। आप जितना मदद करेंगे उतना सबको लाभ मिलेगा, आप यहां पर बैठेंगे सारी वातावरण बनेगा, ठीक है? तो एक इंस्ट्रक्शन है कि आप जो भी संकल्प करेंगे उसमें आपको फायदा हो रहा है, मोबाइल लेकर नहीं आइए, और जो भी क्लासेस होता है तुरंत जगह से नहीं उठिए, और इसमें गारंटी है आप जो विचार कर रहे हैं उसमें आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, कोई रेस्पॉन्ड करे न करे आपका ब्रेन कर रहा है आपके साथ, जिसके थ्रू आप लोग सारे कारोबार कर रहे हैं, ठीक है? और एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, जस्ट इसी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये सही भाई बहनों को लगाया जाता है इंस्ट्रूमेंट, ये DRDO की है, जो वहां के साइंटिस्ट आए थे, ये निमहांस की है, और यह हम ज्ञान सरोवर में भी है, हम करते हैं यहां पे। तो ऐसे ये कलेक्टिव मेडिटेशन के बारे में बहुत ज्यादा महत्व है, जब हम बैठ के योग अभ्यास करते हैं तो एक दूसरे को मदद करते हैं। ये बैंगलोर में किया था 2019 में, और पहली बार भारत में साइंटिस्ट लोगों ने बाबा के बच्चों के द्वारा देखा, जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गामा बैंड एक्टिवेट होते हुए। हमारे ब्रेन में चार वेद हैं, आप सुने होंगे, और जब भी हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, विश्व के लिए संकल्प करते हैं, तब हमारी गामा बैंड, गामा वेव जो है एक्टिवेट होता है उसमें, और ये बहुत जरूरी है। तो जब आप कलेक्टिव मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इंस्ट्रक्शन है कि कोशिश करिए हॉल के अंदर आप मोबाइल लेके नहीं आएंगे, और जब भी क्लास पूरा होता है तुरंत नहीं उठना है। कम से कम कितने समय बैठना है? 15 मिनट समय तो नहीं मिलेगा आपको, कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट से जितने से बैठ सकते हैं। आप 3 दिन करके देखिए आपको क्या फायदा होता है, आपको पता चलेगा। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत भाई। एक हाथ से आप श्रीकांत भाई का धन्यवाद जरूर अर्पित करें। बहुत ही विस्तृत बातें हैं, लेकिन सार में आपने रखा जो मेडिटेशन योग का प्रभाव, सामूहिक योग का जो वाइब्रेशन बनता है वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। और साथ ही जो आपने कहा, जैसे ही क्लास योग पूरा हो 1 मिनट हम बैठें, बहुत सुंदर संकल्प अपने आप को दें ताकि वो स्थिति बने,